ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। छह प्रदेशों में आगामी आर्थिक वर्ष का बजट हुआ सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभा बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 पर शुरू हुई मंत्रालयगत चर्चा। आर्थिक एवं राजनीतिक सुशासन और रोजगार सृजन पर आगामी आर्थिक वर्ष का बजट केंद्रित है, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम बागले का कथन। और अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होंगे हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में विनियोजन विधेयक 2083 के अंतर्गत नौ मंत्रालयों के बजट शीर्षकों पर चर्चा संपन्न हो गई है। आज युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, कृषि, सूचना तथा संचार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था तथा महिला एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालयों के बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान 12 सांसदों ने खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जबकि अन्य सांसदों ने विभिन्न दलों की ओर से अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान सांसदों ने कहा कि उद्योग मंत्रालय का बजट सुदूर पश्चिम और कर्णाली क्षेत्र की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाया है। उन्होंने बजट में बेनामी शीर्षक के तहत किए गए विनियोजन पर भी प्रश्न उठाते हुए इसका उद्देश्य स्पष्ट करने की मांग की। सांसदों ने प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा, पत्रकारों के अधिकार और हितों को ध्यान में रखकर बजट प्रबंधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय संस्कृति आयन निर्माण, सांस्कृतिक विकास के माध्यम से पर्यटन प्रबंधन, विभिन्न भाषा भाषी समुदायों तथा जातीय समूहों के संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की मांग भी की गई। सभामुख टोल प्रसाद अरियाल ने जानकारी दी कि कल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला, गृह, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कार्यालय सहित अन्य निकायों के बजट शीर्षकों पर सामूहिक चर्चा होगी। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ दोगति मंगलवार सुबह 11 बजे होगी। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि आगामी बजट व्यवस्थित, सुरक्षित और मर्यादित श्रम बाजार के निर्माण पर केंद्रित है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में उन्होंने बताया कि बजट का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा राजनीतिक सुशासन, कृषि का आधुनिकीकरण, रोजगार विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास और आर्थिक सशक्तिकरण है। आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अर्थमंत्री बागले ने कहा कि सहायता पर निर्भरता कम कर स्थायी आय और रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी न्यूनीकरण करने की सोच के साथ बजट लाया गया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को उत्पादनशील निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया है और सड़क, डिजिटल और हवाई क्षेत्र में संपर्क विस्तार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को औपचारिक क्षेत्र की ओर अग्रसर किया जा रहा है। अर्थमंत्री बागले ने बताया कि सुदूर पश्चिम, कर्णाली और मध्य प्रदेश को विशेष प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 5 गते शुक्रवार को दोपहर 1:15 बजे बुलाई गई है। प्रदेश सरकारों ने आज आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए प्रदेश सभाओं में बजट पेश किए। कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विदुर कुमार लिंगथेपे ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 40,44,18,000 रूपये का बजट प्रदेश सभा में पेश किया। इसी तरह गंडकी प्रदेश ने 32,99,99,00,000, बागमती प्रदेश ने 66,93,33,33,000, लुम्बिनी प्रदेश ने 37,38,45,00,000, कर्णाली प्रदेश ने 35,39,85,48,000 रूपये और मध्य प्रदेश ने आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए 41,13,86,00,000 का बजट पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि प्रभावी सार्वजनिक सेवा प्रवाह आज की प्रमुख आवश्यकता है। लोक सेवा आयोग के 76वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि स्थायी सरकार के रूप में कार्यरत कर्मचारी तंत्र को समयानुकूल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान कर आम नागरिकों का विश्वास जीतना चाहिए। वहीं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष माधव रेग्मी ने आयोग के प्रति जनता का विश्वास बढ़ने की बात कहते हुए राष्ट्र सेवक कर्मचारियों के चयन में निष्पक्षता कायम रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मौके पर आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली को सम्मानित किया गया, साथ ही आयोग में कार्यरत 3 उत्कृष्ट कर्मचारियों को भी सम्मान प्रदान किया गया। नेपाल के उड्डयन क्षेत्र को सुरक्षित दीर्घ और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वायु सेवा संचालक संघ नेपाल और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ नेपाल के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के अनुसार दोनों संस्थाएं उड्डयन क्षेत्र के समग्र विकास, क्षमता अभिवृद्धि, अनुसंधान, नव प्रवर्तन और ज्ञान आदान प्रदान में सहकार्य करेंगी। इसके तहत मानव संसाधन विकास, नेतृत्व प्रवर्धन, संचालन, इंजीनियरिंग, मरम्मत संभार, सुरक्षा प्रबंधन तथा नवीन प्रौद्योगिकी के संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दक्ष जनशक्ति तैयार करने, विद्यार्थियों और युवा पेशा कर्मियों की क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान एवं नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन देने पर भी सहयोग किया जाएगा। समझौते में उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा संस्कृति के विकास, डिजिटलाइजेशन, डाटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान एवं अनुभव साझा करने की व्यवस्था भी शामिल की गई है। वायुसेवा संचालक संघ के अध्यक्ष प्रताप जंग पांडे के अनुसार समझौते के तहत उड्डयन क्षेत्र से संबंधित सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भट्ट श्रेष्ठ ने सेवाग्राहियों से अपील की है कि यदि मंत्रालय या उसके माथहत के निकायों में निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त रकम मांगी जाए तो प्रमाण सहित तत्काल हॉटलाइन नंबर 1151 पर जानकारी दें। मंत्रालय के अनुसार मंत्री श्रेष्ठ के कार्यभार संभालने के बाद से सेवा प्रवाह को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है। इस अवधि में हॉटलाइन के माध्यम से प्राप्त 13,088 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। शिकायतों में विद्युत अवरोध, खराब ट्रांसफार्मर, पोल और मीटर की कमी और भूमिगत विद्युत जड़ान जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं। मंत्रालय ने सुशासन और सेवा सुधार के लिए एक विशेष सुशासन इकाई भी गठित की है जो कार्य संपादन, सेवा प्रवाह और शिकायत निवारण की नियमित निगरानी कर रही है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबै को यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आप नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन और बढ़ाने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने संबंधी प्रारंभिक समझौते पर सहमत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुई वार्ताओं के बाद ये सहमति बनी है। समझौते के तहत समुद्री व्यापार बहाल करने, सैन्य गतिविधियां कम करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन और दीर्घकालिक परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर अंतिम सहमति अभी बाकी है। समझौते की खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट से तेल से भरे जहाज गुजरने लगे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, जहाज होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, इनमें से कई तेल से भरे हुए हैं। वे दक्षिणी हाईवे से जा रहे हैं जो पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि आवागमन के लिए अन्य रास्ते भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बनी सहमति के बाद आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर 19 जून को जिनेवा में साइन होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस दस्तखत की रस्म की मेजबानी करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बनने के बाद इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इसराइल और पूरी दुनिया के लिए इसे बुरा बताया है। दक्षिणपंथी इसराइली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा, इसराइल को खुद ही इस शासन को गिराने की मुहिम जारी रखनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न करे। स्मोट्रिच ने कहा कि संयुक्त अमेरिका इसराइल अभियान ने ईरान को कमजोर करने में कई सफलताएं हासिल की हैं और वे सफलताएं बेकार नहीं गईं। इससे पहले इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुएर ने भी इस समझौते की आलोचना की। उन्होंने कहा, हम इस समझौते के साझेदार नहीं हैं क्योंकि ये हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता और किसी भी तरह से हमें बाध्य नहीं करता। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर 19 जून को जिनेवा में साइन होंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6 प्रदेशों में आगामी आर्थिक वर्ष का बजट हुआ सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभा बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 पर शुरू हुई मंत्रालयगत चर्चा। आर्थिक एवं राजनीतिक सुशासन और रोजगार सृजन पर आगामी आर्थिक वर्ष का बजट केंद्रित है, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। और अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होंगे हस्ताक्षर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।